एक और कौम, मदियन वालों की तरफ हमने इनके भाई शुएब को भेजा। उसने कहा, मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की बंदगी करो। आपको शुरू से एक सिमेट्री दिख रही है नबियों की दावत में? ये तो नहीं कि एक ने कहा एक एक खुदा है तो दूसरे ने कहा दो हैं, तीसरे ने कहा तीन हो गए। कंटिन्यूस, जहाँ से आपको समझ आ रही होगी बात, कि दीन शुरू से चलते चलते मोहम्मद सल्लम पे पूरा हुआ। और इसके सिवा तुम्हारा कोई खुदा नहीं, और नाप तोल में कमी ना करो। आज मैं तुमको अच्छे हाल में देख रहा हूँ, मगर मुझे डर है कल तुम पर ऐसा दिन आएगा जिसका अजाब सबको घेर लेगा। इसको भी हाईलाइट करें। बस दफा हम अल्लाह की नाफरमानी के सोर्स ऑफ इनकम और तरीक़े तिजारत ढूंढ कर क्या देखते हैं, बहुत प्रॉफिट हो रहा है। तो इस जुमले को पढ़ते ही मुझे ऐसे लगा कि आजकल तो तुम्हारी इकोनॉमी बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आगे आने वाले दिनों में ख़राब हो जाएगी। जहाँ भी नाफरमानी होगी रिस्क के मामलों में, वहाँ एक वक्त आएगा कि इकोनॉमिकल डिसऑर्डर ज़रूर होगा। और ऐ बरादराने कौम, ठीक ठीक इंसाफ के साथ पूरा नापो और तोलो, और लोगों को इनकी चीज़ों में घाटा करके ना दो, और ज़मीन में मुफसिद बन के ना फिरो। अल्लाह की दी हुई बचत तुम्हारे लिए बेहतर है। इसको हाईलाइट करें। हलाल का नफ़ा थोड़ा भी काफ़ी है हराम की ज़्यादा बचत से, अगर तुम मोमिन हो और बहरहाल तुम्हारे ऊपर कोई निगरानेकार नहीं हो। उन्होंने जवाब दिया, शुएब, क्या तेरी नमाज तुझे ये सिखाती है? ये भी मज़े की बात है। आप ज़रा किसी के ऊपर तनकीद तो करें, और ख़ास तौर पर माली मामलात में, तो लोग आपको फ़ौरन नमाज रोज़े का ताना देंगे, और साथ ही कुरान का, और साथ ही उस्तादों का। ये तुम्हारे उस्ताद तुम्हें ये सिखाते हैं? लाओ ज़रा मैं उनको फ़ोन करूँ, लाओ ज़रा मैं उनको बताऊँ। यानी लोगों को तनकीद अच्छी नहीं लगती। और एक जुमला नोट कीजिएगा, 10 नेकियाँ करना आसान है एक गुना छोड़ने की नस्बत। लोग 10 अच्छे काम आपके कहने पे करेंगे, लेकिन आप एक रस्म, कोई एक बुराई, खामी छोड़ने का कह दे वो नहीं करेंगे। यहाँ भी यही दिख रहा है। क्या तेरी नमाज तुझे ये सिखाती है कि हम इन सारे माबूदों को छोड़ दें जिनकी परस्तिश हमारे बाप दादा करते थे, या ये कि हमको अपने मालों में अपने मर्जी करने का इख्तियार नहीं है? आज भी लोग कहते हैं भाई हम खुद कमाते हैं, ये मौलवियों को क्या तकलीफ़ है? तो वही ये बात कह रहे हैं कि हम अपनी मर्जी, अपना माल अपनी मर्जी के मुताबिक खर्च नहीं कर सकते। बस तू ही एक काली जर्फ और रास्तबाज आदमी रह गए। कभी आप में से ये पूरे पारे में जो जो नबियों को ताने मिले हैं ना, उनको जमा कर दें, रिगार्डलेस के किसको मिले। तो आज देखिए कि आपको उन बातों का जवाब मिलेगा जो लोग रोते हैं, हाय दीन पे आए तो लोगों ने हमें ये कह दिया, वो कह दिया। तो देखिए, आपकी मेरी इज्जत ज़्यादा है कि नबियों की? आपके मेरे पास हक बड़ा है कि नबियों के पास? तो उनको इतना कुछ सुनना पड़ा, तो आपको मुझे अगर सुनना भी पड़ गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम खुद ही सोचो, अगर मैं अपने रब की तरफ से खुली शहादत पर था और फिर इसने अपने हाथ से मुझको अच्छा रिस्क भी अता किया, तो इसके बाद मैं तुम्हारी गुमराहियों और हराम खोरियों में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। अगर यानी तुम्हारे कहने पे मैं भी ये काम करूँ, तो मैं कैसे तुम्हारे शरीक हाल हो सकता हूँ? और मैं ये हरगिज़ नहीं जान चाहता कि जिन बातों से मैं तुमको रोकता हूँ, खुद उसका इर्तकाब करूँ। ये बड़ी बात होती है। सबसे बड़ा गम बंदे को फिर ये लग जाता है कि मैं अब खुद वो काम करूं जिससे दूसरों को रोकता हूं। मैं तो इसलाह करना चाहता हूं जहां तक भी मेरा बस चले, और जो कुछ मैं करना चाहता हूं इसका सारा इन्हिसार अल्लाह की तौफीक पे है। देखिए कितना रिलैक्स्ड है। उनको ये भी पता है कि मैं नेकी भी अगर करूँगा तो ये अल्लाह के हुक्म से करूँगा, अपनी मर्ज़ी से नहीं करूँगा, और इसी पर मैंने भरोसा किया और हर मामले में इसी की तरफ रजू करता हूँ। और ऐ बिरादराने कौम, मेरे खिलाफ़ तुम्हारी हठधर्मी कहीं ये नौबत ना पहुंचा दे कि आखिरकार तुम पर भी वही अजाब आ कर रहे जो नूह, यहूद, जो सालेह की कौम पे आया। ये हैं वो आयतें जो अल्लाह के नबी को बुरा कर रही थी। आपके बालों में सफ़ेद बाल देखा अबू बकर ने, अल्लाह के नबी आपके बालों में सफ़ेद बाल आ गया? कहाँ, हाँ, शई बत नहीं हो दूँ वाह खातुहा। कभी मैं और आप भी अपने बालों में एक सफ़ेद बाल ढूंढते हैं किसी गम पे जल के? मुआशरा, ख़ानदान, बिरादरी, रस्म व रिवाज, लोग किधर जा रहे हैं? हमें गम नहीं आता, अल्लाह के नबी को गम था। क्योंकि ये किससे सुनते वक्त अब आपको फील हो रहा है कि अब कुरैश पे भी अजाब आने वाला है। और लूत की कौम तो तुमसे कुछ ज़्यादा दूर भी नहीं है, यानी टाइम के अतबार से भी और इलाके के अतबार से भी। करो क्या, वस्तग़फिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैही। देखो अपने रब से माफ़ी मांगो और इसकी तरफ पलट आओ। इन्ना रब्बी रहीमुम वदूद, बेशक मेरा रब रहीम भी है और अपनी मखलूक से मोहब्बत भी रखता है। ये है इस्तग़फ़ार। पूरी पारे में बार बार इस्तग़फ़ार की बात है, क्योंकि अल्लाह को पता है कि मेरी बंदियाँ ये कुरान सुनते हुए परेशान हैं, दुखी हैं, तकलीफ़ में हैं। इनको महसूस होता है कि हमारे तो गुनाह ही बहुत हैं। तो याद रखिए, गुनाह तो सबके पास होते हैं। अल्लाह गुनाहों को माफ़ करने के बहाने बनाता है। चेहरे पे कुछ लगा हो ना, तो इंसान किसी के सामने जाने से कतराता है। और अगर हमारे चेहरे पे गुनाहों का बोझ हो, गुनाहों के धब्बे हों, और हम अल्लाह को कैसे चेहरा दिखाएंगे? तब हम सब को अल्लाह ताला तसल्लियाँ देता है और अल्लाह ताला हमें अपने गुनाहों की फ़िक्र लगा दे। अब सूरत का अख्तिताम है और हज़रत शुएब के किस्से का भी। कालू या शुएब, आयत नंबर 91। उन्होंने जवाब दिया, शुएब तेरी बहुत सी बातें तुम्हारी समझ में ही नहीं आती। ये आज भी लोग कहते हैं, इनको क्या पता हमारे क्या मसले हैं, इनको तो बैठ के बस तकरीरें करनी आती हैं। यही स्टाइल था। और हम देखते हैं कि तुम्हारे दरमियान एक बेजोर आदमी है, यानी तेरे रिसोर्सेज ही नहीं, बड़े लोगों के साथ तेरी कोई मेलजोल ही नहीं है, और तेरी बिरादरी ना होती तो हम कभी का तुझे संसार कर चुके होते। तेरा बलबूता तो इतना भी नहीं कि हम पे भारी हो। देखिए, बिरादरी अल्लाह से ज़्यादा प्यारी है। इसीलिए फिर हज़रत शुएब का जवाब सुनिएगा। शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, भाइयों, क्या मेरी बिरादरी तुम पर अल्लाह से ज़्यादा भारी है कि तुमने बिरादरी का तो खौफ किया और अल्लाह को पसे पुश डाल दिया? 3 सेकंड सोचिए, क्या मैं अपनी बिरादरी या ख़ानदान से ज़्यादा डरती हूँ अल्लाह की निस्बत? जान रखो कि जो कुछ तुम कर रहे हो वो अल्लाह की गिरफ्त से बाहर नहीं है। ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम अपने तरीके पर काम किए जाओ और मैं अपने तरीके पर काम कर रहा हूँ। सौफ तालमून, अन करीब तुम जान लोगे कि किस पर जिल्लत का अजाब आता है और कौन झूठा है। तुम भी इंतज़ार करो और मैं भी तुम्हारे साथ चश्मे बरा हूँ। आखिरकार जब हमारे फ़ैसले का वक्त आ गया तो हमने अपनी रहमत से शुएब और उनके साथी मोमिनों को बचा लिया, और जिन लोगों ने जुल्म किया था इनको एक सख्त धमाके ने ऐसा पकड़ा कि वो अपनी बस्तियों में बेहिसो हरकत पड़े के पड़े रह गए, गोया कि वो कभी वहाँ रहे बसे ही ना थे। सुनो, मदियन वाले भी दूर फेंक दिए गए जिस तरह समूत फेंके गए थे। एक ही दावत नबियों की, एक ही तरह के एतराज़ कौम के सरदारों के और बड़ों के, और एक इंजाम कौम का। हर नबी के किस्से में यही कहानी सुनी आपने। हमारी नज़र में जो बड़ा होता है ना, हम उसकी नज़रों में बड़ा बनना चाहते हैं। ख़ानदान बिरादरी को बड़ा समझते हैं ना, तो फिर हम उनकी नज़रों में बड़ा बनना चाहते हैं। अल्लाह को बड़ा समझते हैं तो अल्लाह की नज़रों में बड़ा बनना चाहते हैं। दूसरी बात, इसमें इस्तग़फ़ार की है, मग़फ़रत की है। याद रखिए कि हिदायत और मग़फ़रत, ये दो बहुत कीमती चीज़ें हैं। पिछले गुनाहों की माफ़ी और आइंदा के लिए दुरुस्त तर्ज़ अमल, इनकी अल्लाह की नज़र में इतनी वैल्यू है कि बिन मांगे नहीं देता। कौमों ने हिदायत नहीं मांगी, नबी उनको नहीं दे सके। तलब और तड़प नहीं थी, नबियों से फ़ायदा ना ले सके। तो हम सब अपने लिए दुआ करें कि अल्लाह हमें नबियों की सुन्नत पे चला, ना कि उनकी कौमों की सुन्नत पे। बाकी रह गया ख़ानदान बिरादरी, तो अब याद रखिए कि ख़ानदान के साथ प्यार करना अच्छी बात है, ख़ानदान की बड़ों की खिदमत करना बहुत अच्छी बात है, उनकी दुआएं करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ताज़ीम नहीं करना, यानी बी रिस्पेक्टफुल। उनकी रिस्पेक्ट करें पर उनको होली ना बनाएं। हमारे इंडो पाक कल्चर का एक बहुत बड़ा इशू, ख़ास तौर पे बहू बेटियाँ, वो क्या हैं, ख़ानदान का नाम लेकर बस दफ़ा गलत कामों पे मजबूर कर दी जाती हैं। तो अल्लाह ताला मुझे आपको सही मानों में बैलेंस रखते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारने वाला बना दे। अब चंद जुमलों में हज़रत मूसा का किस्सा और फिर सूरत पूरी। आखिरी आयतें भी बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं, इसको ज़रा तवज्जो से सुनिएगा। आयत नंबर 96। वलकद अरसलना मूसा बिआयातिना वसुल्तानि मुबीन। और मूसा अलैहिस्सलाम को हमने अपनी निशानी और खुली सनद मामूरियत के साथ फिरौन और उसके सल्तनत वालों की तरफ भेजा, मगर उन्होंने फिरौन के हुक्म की पैरवी की, हालांकि फिरौन का हुक्म रास्ती वाला न था। क़यामत के रोज़ वो अपनी कौम के आगे आगे होगा और अपनी पेशवाई में इन्हें दोजख की तरफ ले जाएगा। वो कहते हैं ना कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। बिल्कुल फिरौन पर यह बात सच साबित होती है। कैसी बदतर जाए वरूद है जिस पे कोई पहुँचे, और इन लोगों पर दुनिया में भी लानत पड़ी और क़यामत के रोज़ भी पड़ेगी। कैसा बुरा सिला है ये जो किसी को मिले। क्या मिला लोगों को फिरौन को फॉलो करके? जहन्नम, आग। अब नबी सल्लम से कहा जा रहा है, स्टोरी टाइम ख़त्म, क्योंकि आगे एक बड़ी सी स्टोरी और भी आने वाली है अगली सूरत में। लेकिन बीच में अब चंद बातें नबी सल्लम से बराह रास्त। फरमाया, ज़ालिक मिन अम्बाइल क़ुरा नक़ुस्सुहु अलैक मिन्हा क़ाइमुन व हसीद। ये चंद बस्तियों की कहानियां हैं जो हम आपको सुना रहे हैं। ان میں سے بس اب بھی کھڑی ہیں اور بس کی فصل کٹ چکی ہے، یعنی کچھ تو بالکل ڈیمالش ہو گئے، کچھ کے ابھی اثرات موجود ہیں۔ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا۔ شاید سنتے ہوئے کسی کو لگے، ہائے بیچارے سمودی، ہائے بیچارے عادی، ہائے بیچاری قوم سمود، تو اللہ تعالیٰ آپ کا میرا مائنڈ سیٹ سیدھا کرتے ہیں کہ نہیں، میں ہم نے ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا، اصل بات کچھ اور ہے۔ انہوں نے اپنے اوپر خود ہی ظلم کیا، اور جب اللہ کا حکم آ گیا تو ان کے وہ معبود جنہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے، ان کے کچھ کام نہ آئے۔ تو یاد رکھیے، اللہ کے ماں سوا جس کو بھی ہم سجاتے سوارتے پوچھتے رہے، وہ ہمارے کام نہیں آئے گا۔ اور انہوں نے ہلاکت و بربادی کے سوا کچھ فائدہ نہ دیا۔ آج بھی آپ دیکھیے کہ ہمارے ارد گرد تین قسم کی ہی بستیاں ہیں نا، انسانوں کی بستیاں جہاں میں اور آپ ہیں، کھنڈرات ہیں، روئنس، وہاں لوگ نہیں ہوتے، صرف ان کے باقی بچے ہوئے سامان ہوتے ہیں، گھر، اور تیسری جگہیں قبریں، جہاں سامان نہیں ہوتا لیکن لوگ ہوتے ہیں۔ تو سب کچھ ہوگا، میں نہیں ہوں گی جب دنیا سے جاؤں گی۔ آج سوچ کر اپنے لیے فیصلے کرنے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری مدد کر دے۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى، اور تیرا رب جب کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو پھر اس کی پکڑ ایسی ہی ہوا کرتی ہے۔ فی الواقع اس کی پکڑ بڑی سخت اور دردناک ہوتی ہے۔ حقیقت یہ کہ اس میں ایک نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو عذاب آخرت کا خوف کرے۔ ہم نے نشانی لی تو مان لیجئے کہ الحمدللہ آخرت کا فکر ہے۔ وہ ایک دن ہوگا جس میں سب لوگ جمع ہوں گے، پھر جو کچھ بھی اس روز ہوگا سب کی موجودگی میں ہوگا، یعنی قیامت کے دن جو کچھ ہوگا سب کی آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ ہم اس کے لانے میں کچھ تاخیر نہیں کر رہے، بس ایک گنی چنی مدت اس کے لیے مقرر ہے۔ جب وہ آئے گا تو کسی کو بات کرنے کی مجال نہ ہوگی، الا یہ کہ اللہ کی اجازت سے کچھ عرض کرے۔ پھر کچھ لوگ اس روز بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت ہوں گے۔ جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے، جہاں گرمی اور پیاس کی شدت سے وہ ہانپیں گے اور پھنکارے ماریں گے۔ کوئی بڑی گرمیوں کی دوپہر یاد کریں، باہر سے آئے، ہانپتے کانپتے، گلے میں چھالے پڑ گئے، حلق خشک ہو رہا ہے، کانٹے پڑ رہے ہیں حلق میں، جہنم گرم اور اوپر پھر شدت کی پیاس، اور اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک زمین و آسمان قائم ہیں، الا یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے۔ بے شک تیرا رب پورا اختیار رکھتا ہے، جو چاہے کرے۔ رہے وہ لوگ جو نیک بخت نکلیں گے تو وہ جنت میں جائیں گے، وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک زمین و آسمان قائم ہیں، الا یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے۔ ایسی بخشش ان کو ملے گی جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کنٹینیوس نیکیاں کی، کبھی بھی بیچ میں کمی بیشی نہیں ہوئی، حالات جیسے بھی رہے یہ نیکی کو نہ چھوڑ سکے، تو اللہ پھر ان کو ایسا اجر دے گا جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ پس نبی، آپ ان معبودوں کی طرف سے کسی شک میں نہ رہیں جن کی یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں، یہ تو بس لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں، اسی طرح پوجا پاٹھ کیے جا رہے ہیں جس طرح پہلے ان کے باپ دادا کرتے تھے۔ دیکھ لیجیے، پھر باپ دادا کی بات ہے، ہوگا کیا؟ اور ہم ان کا حصہ ان کو بھرپور دیں گے بغیر اس کے کہ اس میں کوئی کاٹ کسر ہو۔ ہم اس سے پہلے موسیٰ کو بھی کتاب دے چکے ہیں، اور اس بارے میں اختلاف بھی کیا گیا تھا، جس طرح آج اس کتاب کے بارے میں کیا جا رہا ہے جو آپ کو دی گئی ہے۔ اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ کی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان کبھی کا فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا۔ یہ واقعہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے شک اور خلجان میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ بھی واقعہ ہے کہ تیرا رب انہیں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے کر رہے گا، یقیناً وہ ان سب کی حرکتوں سے باخبر ہے۔ یہ جو آیت آ رہی ہے 112، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ تھی وہ آیت جس نے اللہ کے نبی کو بہت زیادہ پریشان کیا، اور آپ اس صورت کو پڑھ کے روتے تھے۔ فاستقم کما امرتا ومن تاب معک ولا تطغوا انہ بما تعملون بصیر۔ پس محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور آپ کے وہ ساتھی جو کفر و بغاوت سے ایمان اور اطاعت کی طرف پلٹ آئے ہیں، ٹھیک ٹھیک راہ راست پر ثابت قدم رہو جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا، اور بندگی کی حد سے تجاوز نہ کرو، جو کچھ تم کر رہے ہو اس پر تمہارا رب نگاہ رکھتا ہے۔ ان ظالموں کی طرف ذرا نہ جھکنا، ورنہ جہنم کی لپیٹ میں آ جاؤ گے، اور تمہیں ایسا کوئی ولی و سرپرست نہ ملے گا जो तुम्हें अल्लाह से बचा सके और कहीं से तुमको मदद न पहुँचेगी। और देखो, नमाज कायम करो दिन के दोनों सिरों पर और कुछ रात गुजरने पर। दर हकीकत नेकियां बुराइयों को दूर कर देती हैं। ये एक याद दहानी है इन लोगों के लिए जो अल्लाह को याद रखने वाले हैं और सब्र कर, और अल्लाह के हाथ मोहसिनों का अजर ज़ाया नहीं होता। फिर क्यों ना इन कौमों में से जो आपसे पहले गुजर गईं, ऐसे अहले खैर मौजूद रहे जो दुनिया को ज़मीन में फसाद बर्पा करने से रोकते। दुआ करें अल्लाह ताला आज के दौर में हमें अहले खैर बना दे। ऐसे लोग निकले भी तो बहुत कम जिनको हमने इन कौमों में से बचा लिया, वरना जालिम लोग तो इन्हीं मज़ों के पीछे पड़ रहे जिनके सामान इन्हें फरावानी से दिए गए थे और वो मुजरिम बन कर रहे। तेरा रब ऐसा नहीं कि बस्तियों को नाहक तबाह कर दे, हालांकि इसके बाशिंदे इसलाह करने वाले हों। अल्लाह ताला की पकड़ ऐसी नहीं आती। नबी आए, कौमों ने झुटलाया, फिर पकड़ आई। आज भी जहां हक बात पहुंच जाए फिर लोग ना माने, उन लोगों की सख्ती आती है। वलौ शाअ रब्बुक, बेशक तेरा रब अगर चाहता तो तमाम इंसानों को एक गिरोह बना सकता था, मगर अब तो वो मुख्तलिफ तरीक़ों पर ही चलते रहेंगे और बेराह रवियों से सिर्फ वो लोग बचेंगे जिन पर तेरे रब की रहमत है। दुआ करें अल्लाह हम पे अपनी रहमत कर दे। इसी आज़ादी, इंतखाब और इख्तियार ही के लिए तो इसने इनको पैदा किया था, और तेरे रब की वो बात पूरी हो गई जो उसने कही थी। क्या कहा था? लाम लान जहन्नम मिनल जिन्नति वन नासी अजमाइन, कि मैं जहन्नुम को जिन्नों और इंसानों सब से भर दूंगा। अरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पैगंबरों के किस्से जो हम आपको सुनाते हैं वो चीज़ें जिनके ज़रिए से हम आपके दिल को मजबूत करते हैं। बच्चे को चोट लगती है ना, फिर माँ उसको कहानी सुनाती है, फिर वो रोते रोते सो जाता है। नबी सल्लम के दिल पे चोट पड़ती थी मक्का वालों की बेइत्तनाई पे, तो अल्लाह अपने नबी को ये स्टोरी सुना रहे हैं ताकि दिल जम जाए। इनके अंदर तुमको हकीकत का इल्म मिला और ईमान लाने वालों को नसीहत और बेदारी नसीब हुई, रहे वो लोग जो ईमान नहीं लाते, यानी फिर भी नहीं लोग लाते ईमान। तो इनसे कह दो कि तुम अपने तरीके पर काम करते रहो, हम अपने तरीके पर किए जाएंगे। वन तजीरो इन्ना मुंतजिरून, इंजामे कार का तुम भी इंतज़ार करो और हम भी मुंतजिर हैं। आसमानों ज़मीन में जो कुछ छुपा हुआ है सब अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में है, और सारा मामला इसी की तरफ रजू किया जाता है। बस ए नबी, तो इसकी बंदगी कर और इसी पर भरोसा रख। जो कुछ तुम लोग कर रहे हो आपका रब उससे बेखबर नहीं है। ये आखिरी जुमले पे गौर करें, जो कुछ तुम कर रहे हो रब उससे बेखबर नहीं है। तो ये थी सूरत हूद। वाकई दिल आखिर में उदास हो गया। आखिरी आयतें 103 नंबर के करीब है, उनकी तिलावत थोड़ी सुन के फिर हम सूरह यूसुफ शुरू करेंगे। बिल्कुल आंखें बंद करके पूछिए खुद से कि मैंने इस सूरत से क्या सीखा।
ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون.